आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में एक मुंतखब सरकार के सरबराह के तौर पर सबसे तवील अरसे तक फाइज रहकर भारतीय सियासत में एक तारीखी संग मील तय किया है। G7 मुल्कों ने मगरबी एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अहम बुनियादी ढांचे और आम शहरियों पर ईरान के हमलों की मजम्मत की है और अहम बहरी गुजरगाहों, खासतौर पर आबनाए हुरमुज के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। रूस से खाम तेल लेकर एक बहरी जहाज कर्नाटक में मंगलुरु पहुंच गया है। अमरीका से LPG के साथ एक और मालबरदार बहरी जहाज भी मंगलोर पोर्ट पर लंगरअंदाज हो गया है। बिहार रियासत आज अपना योमे तासीस मना रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने लोगों को मुबारकबाद दी है। और स्क्वाश में मुंबई में इंडियन ओपन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स फाइनल में वीर चोटरानी का मुकाबला अभय सिंह से होगा, जबकि खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में अनाहत सिंह का सामना मिस्र की हाना मुअताज से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में एक मुंतखब सरकार के सरबराह के तौर पर सबसे तवील अरसे तक फाइज रहकर भारतीय सियासत में एक तारीखी संग मील तय किया है। इस तरह जनाब मोदी पवन कुमार चामलिंग से आगे निकल गए हैं, जो 8930 दिन तक सिक्किम के वजीर आला के ओहदे पर फाइज रहे। जनाब मोदी ने गुजरात के वजीर आला और बाद में वजीर आजम के तौर पर सरकार के सरबराह के तौर पर 8931 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इस तरह वो क़यादत के रोल में 25वें साल में दाखिल हो गए हैं। इस संगमील को एक नायाब और नुमाया कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे आला तरीन सतह पर बिला रुकावट अवामी खिदमत और सियासी क़यादत की अक्कासी होती है। अपने करियर के दौर में जनाब मोदी ने कई काबिले कद्र रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। इनमें सबसे तवील अरसे तक गुजरात के वजीर आला के तौर पर काम करना और एक ऐसे वजीर आजम होने का रिकॉर्ड शामिल है जिन्हें वजीर आला के तौर पर सबसे तवील अरसे तक काम करने का तजर्बा हासिल है। जनाब मोदी भारत के ऐसे पहले वजीर आजम भी हैं जो मुल्क की आज़ादी के बाद पैदा हुए। साथ ही उन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जिससे सियासी तसलसल और अवाम की लगातार हिमायत की अक्कासी होती है। जनाब मोदी को 26 मई 2014 को भारत के 14वें वजीर आजम के तौर पर हलफ दिलाया गया था। इस तरह वो लोकसभा में मुकम्मल अक्सरियत हासिल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर बने थे। बाद में वो अपने ओहदे की 2 मुकम्मल मुद्दत पूरी करने वाले पहले गैर कांग्रेसी वजीर आजम भी बने और लगातार 3री मुद्दत के लिए इक्तदार में वापस आए। पेश है एक रिपोर्ट।
मस्कूरा संगे मिल के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल कई दीगर अहम पैमाने, खासतौर पर डिजिटल शोबे में मुख्तलिफ अहम पैमाने भी उबूर किए हैं। इससे कबल इस माह के शुरू में उनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स की तादाद 3 करोड़ तक पहुंच गई, जिससे मस्कूरा प्लेटफार्म पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आलमी रहनुमाओं में से एक लीडर के तौर पर उनकी पोजिशन मजीद मुस्तहकम हुई। फरवरी में इंस्टाग्राम पर जनाब मोदी को फॉलो करने वाले अफराद की तादाद 10 करोड़ से भी तजावज कर गई थी और इस तरह वो अपने ओहदे पर फाइज रहते हुए ये संगे मील हासिल करने वाले पहले आलमी रहनुमा और सियासतदान बन गए। इधर एक्स पर भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 10,64,00,000 फॉलोअर्स हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत में सबसे तवील अरसे तक मुंतखब सरकार का सरबराह बनने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड खिदमत, सख्त मेहनत और पुख्ता अज़्म का एक संग मील है। जनाब अमित शाह ने कहा कि जनाब मोदी के तवील अरसे तक अपने ओहदे पर काम करने से मुल्क पहले की हुक्मरानी, काम करने में दयानतदारी और हर शहरी के लिए अंथक खिदमत के तहत उनकी गहरी लगन और पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। G7 मुल्कों ने मगरबी एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अहम बुनियादी ढांचे और आम शहरियों पर ईरान के हमलों की सख्त मजम्मत की है। एक मुश्तरका बयान में G7 मुल्कों के वज़राए खारजा ने मुतासिरा मुल्कों के साथ यगांगत का इजहार किया है। इनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमरीका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि G7 ग्रुप ईरान और उससे वाबस्ता ग्रुपों के बिलाजवाज हमलों के तनाजुर में खित्ते में अपने साझेदार मुल्कों की हिमायत करता है। G7 मुल्कों ने ईरान पर जोर दिया है कि वो अपनी फौजी सरगर्मियां बिला ताखीर रोक दे। इन मुल्कों ने कहा है कि ईरान के हमलों से इलाकाई और आलमी सलामती को भी वसी तर खतरा लाहिक है। ईरान ने इसराइल के दिमोना शहर में वाके नेगेब न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और अराद शहर में मिजाइलों से हमले किए हैं। ईरान ने बताया कि ये हमले ईरान की नतांज न्यूक्लियाई तंसीबात पर अमरीका और इसराइली हमलों के जवाब में किए गए। IAEA ने कहा है कि रिसर्च सेंटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ताबकारी की सतह में किसी इजाफे का पता नहीं चला है। अलबत्ता इन हमलों से दिमोना और अराद समेत पूरे जनूबी इसराइल में 130 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर मिली है। इसराइल के फिजाई दिफाई निजाम इन दोनों शहरों में मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम रहे। IDF ने इस नाकामी का एतराफ किया है और कहा है कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। इसराइल की फोर्सेज ने तेहरान में मालिकेश्तर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च और डेवलपमेंट तंसीब पर हमले किए हैं। इसराइल का कहना है कि इसे न्यूक्लियाई हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के आलात तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया है कि अगर आबनाए हुरमुस को मुकम्मल तौर पर नहीं खोला गया तो वो ईरान के बिजली घरों पर हमले करके उन्हें नीस्तोनाबूद कर देंगे। जबकि ईरान की फौजी कमान ने इसके जवाब में वार्निंग दी है कि अगर उसकी तवानाई की तनसीबात पर कोई हमला होता है तो वो अमरीका और खित्ते की हुकूमतों की तवानाई, इत्तलाआती टेक्नोलॉजी और समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले सभी बुनियादी ढांचे पर हमले करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस से खाम तेल लाने वाला बहरी जहाज एक्वा टाइटन कर्नाटक में मंगलुरु पहुंच गया है। अमेरिका ने मगरबी एशिया महाजाराई के तनाजुर में ईंधन की आलमी कीमतों में इस्तेहकाम लाने की कोशिश में पहले ही समुंदर में रुके हुए रूस के खाम तेल की फरोख्त की इजाजत देते हुए जुमेरात को आरजी जनरल लाइसेंस जारी किया था। इसके बाद ये जहाज यहां पहुंचा है। इधर अमरीका से LPG के साथ एक और मालबरदार बहरी जहाज मंगलोर बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया है। पिक्सिस पायोनियर नाम का ये मालबरदार बहरी जहाज अमरीकी रियासत टेक्सास से LPG की सप्लाई के साथ बंदरगाह पर पहुंचा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के योमे तासीस के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले बिहार के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रियासत बिहार को दुनिया की पहली जमहूरियत और शानदार सल्तनतों के साथ साथ मालामाल सकाफत और रूहानी रवायात की सरजमीन करार दिया। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने कहा है कि इल्मो दानिश और सकाफत की शानदार विरासत से मालामाल इस तारीखी सरजमीन ने मुल्क की मीरास और तरक्की में बेशकीमती और गिरा कदर ताउन किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा है कि बिहार ने भारत की विरासत को शानो शौकत और रूहानियत से मालामाल किया है और ये मुसलसल तरक्की के नए बाब तहरीर कर रहा है। स्क्वाश में इंडियन ओपन 2026 टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में अभय सिंह और वीर चोटरानी की अपने अपने मैचों में शानदार जीत के बाद अब भारत ने मर्दों के सिंगल्स का टाइटल यकीनी बना लिया है। आज मुंबई में फाइनल मुकाबला दोनों भारतीय खिलाड़ियों वीर चोटरानी और अभय सिंह के दरमियान होगा। दूसरी जानिब खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज शाम मुंबई में दिफाई चैंपियन अनाहत सिंह दूसरी सीड की खिलाड़ी मिस्र की हाना अमोताज का सामना करेंगी। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में एक मुंतखब सरकार के सरबराह के तौर पर सबसे तवील अरसे तक फाइज रहकर भारतीय सियासत में एक तारीखी संग मील तय किया है। G7 मुल्कों ने मगरबी एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अहम बुनियादी ढांचे और आम शहरियों पर ईरान के हमलों की मजम्मत की है और अहम बहरी गुजरगाहों खासतौर पर आबनाए हुरमुस के तहफ़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। रूस से खाम तेल लेकर एक बहरी जहाज कर्नाटक में मंगलुरु पहुंच गया है। अमेरिका से LPG के साथ एक और मालबरदार बहरी जहाज भी मंगलोर पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया है। बिहार रियासत आज अपना योमे तासीस मना रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने लोगों को मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।